अब प्रस्तुत है दिव्यानुभव। आज इसमें हम सुनेंगे जय कैलाशपते शिवशंकर भजन के रचयिता एवं भगवान बाबा के वरिष्ठतम विद्यार्थियों में से एक श्री सोनम ग्यामसो तेंजिन जी एवं टीम रेडियो साई के सदस्य श्री अभिषेक आचार्य जी के इस भजन से जुड़े हुए कुछ अनुभव। ये वार्ता हमारे स्टूडियो में 8 फरवरी सन 2019 को रिकॉर्ड की गई थी।
कैलाशपते शिव शंकर
जय कैलाशपते शिव शंकर
जय कैलाशपते शिव शंकर
जय कैलाशपते शिव शंकर
सांब सदा शिव शंभो
सांब सदा शिव शंभो सांब सदा शिव शंभो
परमेश्वर साई शिव शंभो
परमेश्वर
साई शिव शंभो शैलेश्वर करुणामय शंकर
शैलेश्वर
करुणामय
शंकर
लिंगोद्भव कर शिव शंभो लिंगोद्भव कर शिव शंभो
लिंगोद्भव कर शिव शंभो
त्रिशूल जटाधर गंगाधारी
त्रिशूल जटाधर गंगाधारी
त्रिशूल जटाधर गंगाधारी हलधर शंभो हाला हलधर शंभो सांब सदा शिव शंभो सांब सदा शिव शंभो
सांब सदा शिव शंभो
ईश्वर साई शिव शंभो ईश्वर साई शिव शंभो जय कैलाशपते शिव शंकर
जय कैलाशपते शिव शंकर
सांब सदा शिव शंभो ईश्वर साई शिव शंभो शैलेश्वर करुणामय शंकर, लिंगोद्भव कर शिव शंभो, त्रिशूल जटाधर गंगाधारी, हलाहल धर शंभो, सांब सदा शिव शंभो, भक्तेश्वर साईं शिव शंभो, भक्तेश्वर साईं शिव शंभो, भक्तेश्वर साईं शिव शंभो, भक्तेश्वर साईं शिव शंभो, शंभो
ओम श्री साईराम। इस सुमधुर भजन की रचना का माध्यम भगवान ने जिन भैया को बनाया, श्री सुनम गैम्सो तेंजिन जी, वो हमारे साथ रेडियो साई के स्टूडियो में उपस्थित हैं। सुनम भैया भगवान बाबा के वरिष्ठ विद्यार्थियों में से एक रहे हैं, और सिर्फ यही नहीं, ऐसे कई भजनों की सुमधुर रचना का सौभाग्य भगवान ने भैया को प्रदान किया हुआ है। चलिए भैया से जानते हैं कि स्वामी ने इस भजन को कंपोज करने की प्रेरणा भैया को किस तरह से दी, और भैया के खुद के अनुभव इस भजन की रचना करते समय कैसे और किस प्रकार के रहे, चाहिए जानते हैं। साईराम भैया।
साईराम अभिषेक।
रेडियो साई साई प्रेम वाणी के हमारे कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। भैया, आई एम श्योर मैं पहला व्यक्ति नहीं हूँ जो आपको इस भजन की रचना के लिए हृदय से बधाई देने वालों में आया हूँ। आई एम श्योर कई लोगों ने आपको इस चीज़ के लिए बधाई दी होगी और कृतज्ञता ज्ञापित की होगी कि इतना सुमधुर भजन, भावपूर्ण भजन आपने निर्मित किया।
बधाई का पात्र स्वयं प्रभु खुद है।
जी भैया, लेकिन हम आपके परे नहीं देख सकते हैं। ऑफकोर्स स्वामी को ही क्रेडिट जाता है, वी ऑल नो दैट, लेकिन कितना मधुर सौभाग्य है कि भगवान ने अपनी इस सुमधुर रचना से इस जगत को आशीर्वाद देने के लिए आपको चुना, ये भी अपने आप में एक बड़ा ही सुमधुर सौभाग्य है।
या यूं तो इसको इस तरह कह सकते हैं कि जो अंतर्निहित प्रभु है
जी,
वही बधाई के पात्र है।
बहुत बढ़िया भैया जी। और इस भजन के ऊपर, इस वार्तालाप को शुरू करने से पहले, मैं चाहूँगा कि मेरा अपना खुद का, स्वयं का इस भजन से जुड़ा हुआ एक अनुभव साझा करूँ।
सुनाइए।
कुछ ही महीनों पहले की बात है, मैं सुबह उठकर डेली मेडिटेशन करता हूँ पूजा के दौरान। एक दिन इसी प्रकार के एक मेडिटेशन के दौरान मैं बैठा था अपने पूजा रूम में कि अनायास ही मेरे मन में इस भजन से जुड़ा एक चित्र चलने लगा। वो ये था कि प्रसंग है शिव, जब देवी सती अपनी देह का परित्याग कर देती हैं उस अग्नि कुंड में अपने आप को समर्पित करके, जब उनके पिताजी यक्ष, जो
दक्ष प्रजापति
जब एक यज्ञ का आयोजन करते हैं, और जब देवी सती को पता चलता है कि जानते हुए भगवान शिव को इस आयोजन से दूर रखा गया,
उनको आमंत्रित नहीं करना
एक भूल नहीं थी, एक सोचा समझा निर्णय था उनके पिताजी का, तो वो इस चीज को सहन नहीं कर पाती हैं और वो अपनी देह का परित्याग कर देती हैं। वो एक चित्र चल रहा था कि कैसे भगवान शंकर जो वैराग्य और निर्मोह के प्रतीक हैं पूरे संसार में, किसी चीज से लगाव वगैरह उनमें आता ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक निर्गुण परब्रह्म में ही एक मग्न रहते हैं।
बिल्कुल।
लेकिन वो भगवान शंकर भी अपनी पत्नी से इतना प्रेम करते थे कि जब उनको ये समाचार मिला कि उनकी पत्नी ने देह त्याग कर दी है, तो वो दुख से भर गए। और वो दुख जो था वो क्रोध के रूप में झलक रहा था। उनके सामने जो कुछ भी आ रहा था वो नष्ट हो जा रहा था, और वो अपनी पत्नी की मृत देह को, मृत शरीर को अपने शरीर पे खुद
धारण कर
पकड़े हुए यहाँ वहाँ पूरे विरह में विचरण करते हैं। वो हमने सब ने वो प्रसंग सुना है।
हाँ जी।
तो मेरे मन में सिर्फ ये कल्पना चलने लगी कि अब पूरी सृष्टि का जो संचार है वो रुक गया है। सभी देवता एक तरफ तो परेशान है कि ये सृष्टि चल नहीं रही है, और दूसरा वो खुद भी भगवान शिव शंकर जी के इस दुख में शामिल हैं। उन लोगों को भी उस दुख का एहसास हो रहा है, और वो लोग भी दुखी हैं देवी सती के चले जाने से। और ऐसे में भगवान विष्णु से उन्होंने सबने प्रार्थना की कि प्रभु कोई हल निकालिए, कि भगवान शंकर जी इस परिस्थिति से जितनी जल्दी से जल्दी हो सके बाहर निकलें और हमारा भी दुख कम हो। तो शंकर जी का दुख तो और भी कई गुना ज़्यादा होगा। तो मेरे सामने कल्पना आई मेरे ध्यान पटल में कि भगवान विष्णु और सभी देवी देवता भगवान शंकर के पीछे पीछे चलते चलते वो भी दुख भी दुखी हैं, और करुण हृदय से भगवान शंकर की स्तुति कर रहे हैं। आपके इस भजन में जो आपने शब्दावली का प्रयोग किया है, इस भजन के सारे शब्द भगवान शंकर के विभिन्न नाम रूपों का ही
वर्णन है,
चयन है। हाँ। भगवान के नाम रूपों से ही लेके इस भजन की आपने रचना की है। तो जय कैलाशपते शिव शंकर ऐसे करके भगवान विष्णु गाते जा रहे हैं, और भगवान विष्णु के मधुर कंठ से निकले हुए इस भजन को सुन के भगवान शंकर का जो दुख, जो क्रोध के रूप में प्रकट हो रहा था, अब वो ठंडा होते 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 वो आंसुओं के रूप में उनकी आंखों से निकलने लगा, और भगवान शंकर जो अस्थिर हो गए थे वो स्थिर हो गए, और वो भी रोने लगे। एवरीबडी वॉज क्राइंग, सभी देवी देवता भी रो रहे थे, और रोने का कारण सिर्फ देवी सती के चले जाने का था, ऐसा कुछ और नहीं था। लेकिन भगवान शंकर फिर धीरे 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 वो शांत हुए और वापस सब कुछ हुआ। जब मैंने मेरी आंखें खुली उस मेडिटेशन ध्यान के बाद, जब मैंने देखा मेरी खुद की आंखों से आंसू निकल रहे हैं, और मैं दुखी नहीं था, और ना मैं इसको एक्सटेसी वाले आंसू भी नहीं कह पाऊंगा, क्योंकि ऐसा कोई आत्मान मतलब एकदम ऐसा अनुभव बहुत खूब आनंद की अनुभूति नहीं थी। लेकिन मैं काम एकदम शांत होते हुए भी मेरी दोनों आंखों से आंसू बह रहे थे, और ये जो अनुभव था, ये जो ध्यान के दौरान मैंने जो दृश्य देखा, और उसमें ये जो भजन चल रहा था जय कैलाशपते शिव शंकर, मैं बता नहीं सकता हूँ सर कि मेरे मन में किस प्रकार की शांति बैठी हुई थी। रोते समय यूजुअली मन बड़ा अशांत हो जाता है, लेकिन मैं शांत था कि मैंने इतना बढ़िया दृश्य देखा। तो इस भजन से जुड़ी हुई ये मेरी एक ऐसी सुमधुर स्मृति है कि मैं वर्णन नहीं कर सकता, और मैं इसीलिए चाहूँगा कि आप इस भजन से जुड़े हुए अनुभव, कब ये भजन आया, कैसे आया, इसकी प्रेरणा भगवान के द्वारा आपको कैसे प्राप्त हुई, उन सब चीज़ों का वर्णन भी हमसे ज़रूर करें।
ज़रूर, ये तो मेरी अहोभाग्य की बात है कि आज मैं इस स्टूडियो में आपके साथ बैठ के ऐसे सुमधुर विषय पर आपके साथ वार्तालाप करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सबसे पहली बात तो आपको बधाई देना है, आप बधाई के बिल्कुल ही बधाई के पात्र हैं कि ऐसे परिकल्पना जो कर सकते हैं किसी भजन को लेकर, ये विशेष उनकी कृपा से ही होता है
कि
विष्णु भगवान के मुखारविंद से इस भजन को गवाना
जी।
अपनी कल्पना में ही सही, ये किसने सोचा होगा। हम लोग तो खुद गाने वाली बात कहते हैं
जी।
खुद गाने के लिए बैठ जाते हैं
जी।
लेकिन ये कहना कि प्रभु आपके सुमधुर कंठ से इस भजन को सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो, और फिर उसमें बिना किसी वजह के आप रोने लग गए, ये तो भाव विमल होने वाली बात भी नहीं है
जी।
भाव से पड़ा जो होते हैं वो अनुभूति है
जी।
ये सब कुछ जो है अनायासी होता है
जी।
जब प्रभु ठान लेते हैं, वो संकल्प जब करते हैं, उस निर्धारित समय में हो जाता है, क्योंकि वो प्रभु तो त्रिकालदर्शी है
जी।
तीनों काल में विद्यमान है और हम खाली वर्तमान में है, तो इसलिए हमें पता ही नहीं चलता है कि क्या होने वाला है कल
जी।
तो मैं ये कहना चाहूंगा कि कुछ भी अनायास कभी भी नहीं होता है
जी।
कोई भी संयोग से नहीं होता है
जी।
योग से होता है, मात्र योग है, वियोग भी नहीं, संयोग भी नहीं,
क्या बात है?
योग ही योग है
जी।
तो उन्होंने चाहा, हुआ।
जी।
तो अब ये 1984 या 82 साल की बात है।
अच्छा।
जब हम लोग ताबड़तोड़ भजन का रसना हुआ होता जा रहा था हमारे हॉस्टल में
जी,
और सब लोग कवि बन गए थे, सब लोग लिखते थे, सब लोग भावुक बन गए थे, भावना में गोते लगाते थे सब लोग,
क्योंकि स्वामी ने पहली बार हम लोगों से आग्रह किया था कि तुम लोग बनाओ जी जी।
ये हुआ था उनकी 68th बर्थडे के बाद, तो स्वामी ने कहना शुरू कर दिया बाकी लोग कंपोज कर सकते हैं, तुम लोग क्यों नहीं कर सकते हो, किसी का चोरी करके गाना नहीं, खुद अपना गा लो
जी।
तो इतनी बड़ी प्रेरणा के बाद तो बिल्कुल कहते हैं ना,
सारे के सारे विद्यार्थी लग गए। हाँ जी।
पंगुम लंग गए थी गिरिम
जी,
तो
जी।
ये तो वहां पर बिल्कुल दृष्टिगोचर होता था
जी।
तो हम सब लोग भजन कंपोज करने लग गए। तो मेरे लिए इसका एक बड़ा स्रोत, एक बड़ा प्रेरणा, प्रेरणा का स्रोत हुआ करता था स्टूडेंट्स का, विद्यार्थियों का, जो भजन गाते थे
जी।
जो जब स्टूडेंट्स भजन गाते थे अपने ढंग से गाते थे
जी।
सबका अपना अपना स्टाइल, अपना अपना शैली
जी,
अपना अपना गाने का तौर तरीका
जी। हाँ।
तो मुझे उससे प्रेरणा प्राप्त होता था।
अच्छा।
कि वी कुमार इस तरह गाते हैं, एस कुमार जी का गाने का ढंग यह है, एस कुमार जी का जरा कर्नाटिक शैली में है
जी।
तो कर्नाटिक शैली में एक भजन का भजन कंपोज हो जाए, स्वामी से यही प्रार्थना करके फिर बैठ जाते थे। तो शिवरात्रि का समय था।
अच्छा।
और लक्ष्मीनारायण कोटे बिल्कुल ऐसा एक अंदाज में भजन गाने वाला एक ऋषि पुत्र की तरह मेरा एक क्लासमेट हुआ करता था। तो लक्ष्मीनारायण कोटे जी ने मुझसे कहा कि मेरे लिए कोई भजन नहीं है शिवरात्रि में गाने के लिए। ऐसा ही प्रश्न लेके बहुत लोग आ जाते थे
जी,
कि मेरे लिए कुछ भजन कंपोज किए हो कि नहीं
जी।
ये इसलिए पूछते थे क्योंकि स्वामी उनसे पूछ लिया करता था कि तुम आज शाम को कुछ नए गा रहे हो कि नहीं
जी।
तो सबके सामने यही एक प्रसंग हुआ होता था कि भगवान आज शाम को क्या गाएं
जी, जी।
कोई नया भजन गाएं स्वामी के चरणों में। तो लक्ष्मीनारायण कोटे जी का इतना ही कहना था, मैंने इमीडिएटली बैठ के स्वामी से प्रार्थना किया और फिर जय कैलाशपति शिव शंकर सांब सदा शिव शंभो जो आप कह रहे थे, ये तो राग किरवानी में इस, और किरवानी में जो जिस जो भाव है इसमें
जी,
जो वैराग्य का भाव है
जी,
और फिर जो करुणा का भाव है
और प्रार्थना,
वैराग्य
का भी साथ में,
वैराग्य करुणा और प्रार्थना से बिल्कुल भरपूर है ये।
वाह जी।
तो ये भजन का जो रसना हुआ, और फिर ये भावगीत नहीं एक संकीर्तन के रूप में रसना हुआ
जी जी,
क्योंकि इसमें खाली शब्दों का संचार आपने जो कहा
जी,
वो बिल्कुल सही है कि इसमें खाली मात्र उनका ही प्रशस्ति हुआ है
जी, भगवान शिव का,
भगवान शिव का प्रशस्ति है, उनसे कुछ मांगना है नहीं
जी, सिर्फ
क्योंकि वो तो पालनहार है
जी
और देनहार है
जी, जी जी।
तो उनसे क्या मांगना है, जो सब कुछ जानते हैं
जी,
हमारी जो है त्रुटियां भी वो जानते हैं, हमें जो कुछ देना है वही जानते हैं
जी।
तो उनसे फिर मांगना तो जो है हमारे लिए बिल्कुल मूर्खता होती है
जी जी जी।
तो इसलिए ये प्रार्थना, ये भजन जब बना तो लक्ष्मीनारायण कोटे जी ने शिवरात्रि के समय में ऐसा संजोकर गाया, इस भाव से गाया कि बिल्कुल प्रशांति नीलायम यहाँ जो पुटपर्ती गूंज उठा उस भजन से।
वाह क्या बात है जी।
और पूर्णचंद्र ऑडिटोरियम में उन्होंने भरपूर ढंग से इस भजन को गाया था।
बहुत को।
और ये भजन जो है बाद में बहुत लोगों ने भजन गाया है
जी।
तो ऐसा ऐसी बहुत सारे अनुभूति होता ही रहा इस भजन के माध्यम से
जी।
लेकिन 1996 साल में
जी।
लोगों की प्रेरणा से मैंने, लोगों ने कहा कि भजन कंपोज भी करके रखो, भूल जाओगे नहीं तो
जी जी जी।
तो मैंने सोचा कि भजन कंपोज कर लेते हैं,
यानी रिकॉर्ड करने के लिए,
भजन रिकॉर्ड करने के लिए
जी।
तो मेरा कोई पूर्व अनुभूति था ही नहीं, तो मैंने पांडुरंग दीक्षित जो आप जानते हैं ज्योत्सना रेड्डी जी के पिताश्री और राजा रेड्डी जी के जो ससुर जी,
ओहो जी जी,
जो शिरडी के साई बाबा के संगीत निर्देशक
जी,
इतना वरिष्ठ संगीतकार,
बहुत चर्चित नाम है जी,
बिल्कुल चर्चित नाम है। तो मैंने उनको, उनसे रिक्वेस्ट किया मैं, क्योंकि उनको ही जानता था
जी।
तो उन्होंने कहा कि आ जाओ मुंबई में, और फिर मेरा अपना ही लड़के का स्टूडियो है
जी,
वहीं रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। तो फिर हम लोगों ने रिकॉर्डिंग शुरू किया, और ये जब ये जय कैलाशपति शिवशंकर मैं गा रहा था तो मेरा एक विलक्षण अनुभूति हुआ
जी।
जब भजन मैं गाता ही जा रहा था
जी,
और दूसरी आवर्तन में सेकेंड स्पीड जो कहते हैं उसमें हम लोग दूसरी काल में पहुंच गया था। तो अचानक मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं खुद विलय होता जा रहा हूँ। एक कहते हैं ना कि स्वामी ने मुझे बहुत, उससे बहुत साल पहले स्वामी ने मुझे कहा था कि दृश्य विलय क्या होता है, और दृश्य विलय का साक्षात अनुभूति स्वामी ने मुझे दिया था जब मैं मदुराई से आ रहा था।
अच्छा।
तो मैं यहाँ एक बस में बैठ के मदुराई से, मद्रास से पुट्टपर्ती का बस में बैठ के मैं आ रहा था।
अच्छा।
तो जैसे ही बुकापट्टनम क्रॉस किया तब अचानक मैं जाग गया था बस में, और उस अंधेरे में मैंने बाहर का दृश्य देखा। तो हम लोग एक स्कूल, बुकापट्टनम स्कूल
जी,
उस स्कूल से होके गुजर रहा था हम लोग।
अच्छा।
तो अचानक मैंने आगे की तरफ देखा तो मैं बिल्कुल ड्राइवर के पीछे, चालक के पीछे बैठा हुआ था।
अच्छा।
अचानक मेरी आंखों के सामने से वो चालक और वो दृश्य विलय हो गया।
ओहो।
कुछ भी नहीं था वहां पर। तो मैं एकदम डर कर मैंने चारों तरफ देखा, हॉल पूरा पूरी ही बस में कोई भी नहीं था।
ओहो।
बस खाली था, और अचानक मुझे ये अनुभूति हुआ कि बस भी नहीं है, कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और मैंने खुद को देखा, मेरा शरीर भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, लेकिन मैं वहां था। और उसी वक्त एक विचित्र अनुभव हुआ कि मैं खुद को एक छोटा सा, जो जिसे कहते हैं एक ज्योति की, ज्योति का रूप
जी,
ऐसे ज्योति की तरह मैंने खुद को महसूस किया, और एक पूर्ण ज्योति की तरह कोई ऊपरी श्रृंखला में, ऊपरी जो तह में कोई है, जो साई है, हम दोनों के सिवा और कोई है, कोई था ही नहीं वहां पर
जी, जी, जी।
और उसी वक्त साई ने कहा गाओ तुम, और मैंने इतनी जोर से मैंने भजन गाया कि मेरे सामने वाले वो बस के सारे लोग जाग गए, बाद में पता चला। तो ऐसा ही अनुभूति जब जय कैलाशपति शिव शंकर गा रहा था, वो दृश्य विलय होने लगा, मैं खुद को विलय होने का जो अनुभूति जो है, मैं खुद विलय होता जा रहा था, मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ, और मेरे सारा शरीर, मेरा जो मन, मैं जो हूँ
जी,
सारा ही पीछे की तरफ विलय होता जा रहा है, और मैं खुद अकेला आगे बढ़ रहा हूँ और उनमें लीन होता जा रहा हूँ मैं
जी।
तो ये एक अनुभूति, विलक्षण अनुभूति जो इस भजन के साथ हुआ था मेरे साथ भी।
मैं अभी इस दोनों कड़ियों को जोड़ पा रहा हूँ। इस भजन की आपकी अनुभूति उस समय गायन की ऐसी थी कि आपने खुद का अपना विलय देखा।
हाँ जी।
मेरे मेडिटेशन में, मेरे ध्यान के दौरान वो जो सीनरी आई, वो जो परिकल्पना, वो जो प्रसंग आया,
हाँ जी,
वो भी अनायास नहीं था जैसा आपने कहा।
बिल्कुल नहीं।
क्योंकि उस प्रसंग के दौरान जब माता सती ने अपने आप का विलय किया अग्नि में,
बिल्कुल,
और उस मृत देह को जब लेकर भगवान शंकर विरह में खोए हुए, विरह में अपने आप को खो गए, खो दिए थे और चले जा रहे थे, तो किस प्रकार से उनके शरीर के अंग प्रत्यंग गिरने लगे, उनका, माता सती की जो मृत देह थी उसका भी विलय हो रहा था। और मेरी जो परिकल्पना थी, मैं आपको कहना भूल गया कि जब देवताओं ने ये गायन शुरू किया भजन का, वो तभी था जब भगवान शंकर ने ये पाया कि उनके शरीर पे अब माता सती का के शरीर का कोई भाग नहीं रहा है। तो वो आगे नहीं जा पाए। उन्होंने कहा कहां गिर गया सब कुछ, क्योंकि उनको पता नहीं चल रहा था कहां गया। हम लोग इसी प्रकार से शक्ति पीठ जो निकले हैं वो इसी प्रकार से निकले हैं।
बिल्कुल।
और जब भगवान शंकर आगे नहीं बढ़ पाए कि कहां गई सती का, यू नो, सती कहां गई करके, उस समय पीछे देवताओं ने खड़े होकर इस स्तुति के माध्यम से, इस भजन को गायन के माध्यम से भगवान शंकर की स्तुति करना शुरू की।
बिल्कुल।
और भगवान शंकर उसको सुन के, और सभी के सभी लोग एकदम भाव विभोर होके, और वो सारी चीजें। तो ये अनायास ही नहीं था कि आपको भी वो दृश्य विलय का जो आपको अनुभव हुआ, और मेरे भी स्मृति में जो एक दृश्य विलय समवेयर, ये बड़ी ही अलौकिक इस भजन के पीछे, व्युत्पत्ति के पीछे एक कारण हो सकता है।
बिल्कुल
जी सर। हम बता नहीं सकते कि हम आपके कितने आभारी हैं जो आपने इस भजन से जुड़े अपने सुमधुर अनुभव हम सभी के साथ साझा किए। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद।
मैं भी बिल्कुल ही आभारी हूँ। थैंक यू सो मच, बहुत धन्यवाद।
साईराम सर।
साईराम।
अभी आप सुन रहे थे दिव्यानुभव। आज इसके अंतर्गत हमने जय कैलाश पते शिवशंकर भजन की रचना के पीछे जुड़े कुछ अनुभव सुने। ये कार्यक्रम रेडियो साई के स्टूडियो में 8 फरवरी सन 2019 को रिकॉर्ड किया गया था।